शक्ति सगुण समे पंच विहार चार कर्म संदर्शे शिक्षा कुशले ब्रह्मे सदा वंदे गुरु भक्ति संयमे नया तरंति संसार सायरम घोरम शिणंती अक्षुकम जन्म मरणम न पावती ये नित्तम व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला शतकर्मा गिरवास्तपोधन धना साधु क्रिया साधुवा शील प्रापरणागुण प्रहरणाश्चंद्रार्क तेजोथिता मोक्ष द्वारक पाशपा तन्वता क्लेनंतु माम साधुवा गुरुवः पान्तु नो नित्यम् ज्ञान दर्शन नायकाः चारित्रागणौ गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छाएं हम प्यारे भक्ति गाओ सुखो को दशालोचन समनाम समदर्शन समचार युक्तान पंच विहाचारण मैरियान आयादि सुगुणान उपदेशान मच्छायन किरण गोपाल ध्यान सुग साहुम सयान कालम पंचे में पूजे में वृंदा मन मन सामी दुख को कम को लाओ सुगम समय जन सुख भक्ति को नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिनात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते बोले भगवान महावीर स्वामी के आचार्य कुंद कुंद स्वामी के आचार्य सनंद भद्र स्वामी के आचार्य गुरु विद्यासागर आचार्य समंत भद्र स्वामी का अपन पढ़ रहे हैं। धर्म की शुरुआत जीवन में श्रद्धा से होती है। अब किस किस बात की श्रद्धा? सात तत्वों की श्रद्धा, सत्य देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा, ये सारी बातें अपन समझते हैं। एक बात और समझने की है। कई बार ऐसा मन में आता है या ग्रंथों में भी ये बात अपेक्षाकृत कही जाती है कि व्रत नियम संयम से मोक्ष नहीं होता, ऐसा सुनने में भी आता है। तो वहां पर आचार्य भगवंतों का क्या आशय है, क्योंकि हम व्रत नियम संयम की चर्चा कर रहे हैं, तो वहां पर कभी अपन टोडर ग्रंथी को पढ़े तो वो लिखते हैं कि जो तत्व ज्ञान के अभाव में व्रत नियम संयम से ही तपश्चर्या से ही मोक्ष माने हैं, उनके लिए कहा है कि तुम्हारे तपश्चर्या इत्यादि से मोक्ष नहीं मानेंगे, क्योंकि बिना तत्व ज्ञान के अकेले तपश्चर्या से तो आज तक कई लोगों ने स्वर्ग तो पाया है पर मोक्ष किसी ने नहीं। तो जहां पर भी ऐसी बात अपन को सुनने में आती है कि तपश्चर्या इत्यादि से मोक्ष नहीं होता, तो वहां पर आश्रम हम यही समझेंगे कि बिना तत्व ज्ञान के जो तपश्चर्या करता है, व्रत नियम धारण करता है, वो पुण्य बंध के तो कारण होते हैं पर उनके द्वारा निर्जरा नहीं हो पाती है, पुण्य का अर्जन तो होता है। और जो सम्यक दर्शन के साथ यदि तत्व ज्ञान के साथ व्रत नियम का पालन करता है, वो तो व्रत नियम उसके साक्षात मोक्ष के कारण भी है और परंपरा से मोक्ष के कारण भी। महाव्रत है तो साक्षात मोक्ष के कारण है, अनुव्रत है तो परंपरा से मोक्ष के कारण, क्योंकि वे निर्जरा के क्षयोपशमिक भाव है, चारित्र जो है वो क्षयोपशमिक भाव है, और क्षयोपशमिक भाव औदरिक भाव की तरह अकेले बंध के कारण नहीं होते, वे निर्जरा के भी कारण। ये बात अपने को जाननी चाहिए। हमने पिछले दिनों यह भी समझा है कि व्यवहार चारित्र जिसका कि हम वर्णन सुन रहे हैं, आचार्य महाराज हमसे जिसका वर्णन कह रहे हैं कि ऐसा है ये व्यवहार चारित्र, तुम अंगीकार करो, कहने के लिए करो, हमारी दृष्टि क्या होनी चाहिए। व्यवहार चारित्र को ये मान करके उसको ग्रहण करने की बुद्धि होनी चाहिए कि व्यवहार चारित्र उपाधि है ये मान करके उसको ग्रहण करने की बुद्धि, ये विचार है। व्यवहार चारित्र का प्रारूपण कर रहे हैं तो व्यवहार चारित्र ये है या कि उपाधि है, ऐसी चर्चा भी जो है अपने भीतर उठानी चाहिए। क्योंकि ऐसा भी आपको सुनने में आता है, ऐसा भी आपको पढ़ने में आता होगा कि व्यवहार से झूठा है, यथार्थ नहीं है। तो व्यवहार चारित्र झूठा है क्या? क्या वो ये है क्या? हम उसे करेंगे तो अभी जान करके करेंगे, ऐसा मान करके शुरू करें क्या कि आचार्य भगवंतों की वक्षा ऐसी है? तो कहते ऐसी है क्या? व्यवहार चारित्र प्रारंभिक अवस्था में तो उपाधि है। तो कहते फिर किस अपेक्षा से उसको नहीं कहते? क्योंकि जो व्यवहार चारित्र को ही मोक्ष का कारण माने हैं, बापू तो ये ही कहा है कि अकेले व्यवहार चारित्र से नहीं हो सकता। व्यवहार चारित्र जो निश्चय चारित्र की तरफ ले जावे या निश्चय चारित्र से समन्वित जो व्यवहार चारित्र है वो उपाधि है, और ऐसा निश्चय चारित्र जो व्यवहार चारित्र से समन्वित है सो उपाधि है, अन्यथा अकेला निश्चय चारित्र भी हो ही नहीं सकता बिना व्यवहार चारित्र के। किसी को बिना द्रव्य श्रुत के आलम्बन लिए भाव श्रुत नहीं होता, ऐसे ही बिना द्रव्य लिंग के भाव लिंग नहीं होता, ऐसे ही बिना द्रव्य चारित्र बाह्य चारित्र अंगीकार किए अंतरंग चारित्र नहीं होता। कोई कहे कि मेरे तो भाव से चारित्र हो गया है, बहरंग में भले ही ना हो गए, तो कहते हैं कि वो मोक्ष मार्ग के विरुद्ध प्ररूपण करता है। ऐसी भगवान की वाणी नहीं है, ऐसी परीक्षा कर लेना कि भगवान की वाणी ऐसी है या नहीं है। और कहते कि व्यवहार यथार्थ है तो किस अपेक्षा से है? क्योंकि व्यवहार पर्याय को अपना विषय बनाता है, व्यवहार अपने द्रव्य को विषय नहीं बना सकता है, सो पर्याय को बनाता है। सो कहता राग द्वेष इत्यादि भी जो है वो जीव के है। पर फिर साथ में निश्चय ने कहता है कि नहीं, राग द्वेष इत्यादि जीव के नहीं है, जीव तो इन राग द्वेष से रहित है। तो ऐसा जान करके कि जीव का स्वभाव राग द्वेष नहीं है, हम राग द्वेष से बचने का उपाय करते हैं, और जब बचने का उपाय करेंगे तो वह ये चारित्र के बिना बच कैसे सकते? कोई ये तो कहे कि मैं राग द्वेष से बचना चाहता हूँ लेकिन व्रत नियम संयम नहीं ग्रहण करूंगा, तो कहते ये तो ऐसी बात है जैसे कोई अपने माथे से पहाड़ फोड़ना चाहे तो फूटेगा क्या? कहते नहीं फूटेगा। या कहते कि ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई बिना बीज के और फसल काटने की बात करे, ऐसा नहीं है। तो बिना व्यवहार चारित्र अंगीकार किए अंतरंग में निश्चय चारित्र की उपलब्धि नहीं हो सकती है, ऐसा विचार करके तत्व ज्ञान पूर्वक हम इस बाह्य आचरण को भी अंगीकार करें। एक जगह लिखते हैं कि तपश्चरण इत्यादि से आपने ही तो कहा था कि उससे क्या होने वाला है, तो कहते हमने किसके लिए कहा था जिसको तत्व ज्ञान नहीं है, पर तुम भी उसका ही आलम्बन ले करके और श्रद्धांजलि तपस्या को ये मानोगे तो तुम्हारा श्रद्धा नहीं होगा, ऐसा लिखा हुआ है। यू कारण विषय के तत्व न हो सके, स्वयं को तत्व नहीं हो पा रहा है, पर श्रद्धांजलि विषय को तत्व को भला जाने हैं, और जो श्रद्धांजलि विषय भी तपस्या को भला न जाने हैं सो मोक्ष मार्ग ही नहीं, वो मोक्ष मार्ग ही नहीं है। जो कहता है कि तपस्या से कुछ नहीं होता, मैं तपस्या नहीं कर पा रहा हूँ इतना ही कहो, लेकिन आज वर्तमान में तपस्या नहीं हो सकता या तपस्या से मोक्ष नहीं होता है, ऐसा अगर कोई माने, अकेले तत्व ज्ञान से मोक्ष होता है ऐसा कोई मान बैठे, तो कहते हैं ये सच्चा मोक्ष मार्ग का प्ररूपण करने वाला नहीं है। एकांतवाद दूषित समस्त विषयाधिक पोषक अप्रशस्त, फौरन लाइन याद कर लेना कि ये तो किसी एक पक्ष को ही बार बार उसी पक्ष को कहता है और बाकी दूसरे पक्ष का निषेध करता है, तो एकांत का पोषक है और व्रत नियम तपस्या इत्यादि से मोक्ष नहीं मानता है तत्व ज्ञान पूर्वक भी, तो कहते हैं कि ये तो विषय प्रकार का पोषण है। सच्छंद वृत्ति आगे जाके कहते कि बहुरी भरताजी सम्यक दृष्टि के विषय प्रसाय की प्रवृत्ति जैसी हो वैसे तो वो हम आने कहेंगे, पर तुम उनका उदाहरण करी स्वच्छंद हो तो संसार बनाओ है। हम आज वर्तमान में ऐसा मान करके बैठ जाते हैं कि उनके तो 96,000 गाड़ियां थी, उनके तो भोग उपभोग की सामग्री थी, शायद सम्यक दृष्टि थे, सो विषय कषाय तो वे भी करते थे, क्योंकि श्रद्धांजलि विषय तो विषय कषाय को ही जाने हैं, बुद्धि पूर्वक विषय कषाय से बचने का उपाय करें, इसके बाद भी कर्म के उदय में विषय कषाय हो गए तो उस पर हमारा बस नहीं है, पर श्रद्धांजलि में विषय कषाय ये है और विषय कषाय का कोई उपाय नहीं करेगा वो कहलाएगा सम्यक दृष्टि, और विषय कषाय के जो सब उपाय करे और स्वयं को मोक्ष मार्ग की माने तो कहते कि अभी तत्व का ज्ञान भया नहीं हुआ ही नहीं है, अभी तत्व का बोध नहीं। ऐसा विचार करके फिर अपन इस चीज को शुरू करें, रोज अपने को ये चीज रिवाइज कर लेना चाहिए कि मैं अगर व्यवहार चरित्र का वर्णन पढ़ रहा हूँ तो भूल तो नहीं गया हूँ कि ये व्यवहार चरित्र मात्र साधन है, मुझे साध तो अपने राग द्वेष को घटाना है। इस राग द्वेष के घटाने में ये सारे व्रत नियम संयम इत्यादि इसकी निजरा में सहयोगी है, सम और निजरा अगर होती है तो किससे होती बताओ। सबुक्ति समिति धर्मानुपेक्षा परिचय जय चार और कोई तब समझा जब बस दो ही सूत्र लिखे हुए तत्कार सूत्र संवर निर्जा अगर होगी तो इन्हीं से होगा। और मुक्ति समिति धर्म अनुपेक्षा परिचय या चारित्र ये है क्या, ये सब व्यवहार है अगर देखा जाए तो अंतर में तो इन रूप ही आत्मा है। यदि अगर निश्चय का प्ररूपण कहो तो इनसे पृथक आत्मा नहीं है, इसमें हम एक ही कहेंगे दंशन नाम चरित्ता निशे भी दब्बानी साउना निचम पानी पुन जान किन्नी भी अपान निच्छेद। मैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को अंगीकार करता हूँ वाह्य में, लेकिन अगर मैं विचार करूँ तो ये सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र मेरी आत्मा से पृथक नहीं है, इसलिए एकमात्र आत्म तत्व ही है वही योग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को भी पीछे जोड़ दिया, सोचो जिसको अंगीकार करते हैं उसका फल प्राप्त हो जावे तो फिर उसको तो पीछे छूट ही जाएगा, ऐसी तो है ही नहीं। अगर हम नाव से उस पार गए हैं तो नाव कब तक उपाय देंगे, जब तक उस पार नहीं पहुंचे बाकी तो फिर क्या नहीं कहना पड़ेगा कि क्या छोड़ी हमने नाव, हमने कहा छोड़ी तुम तो उतर भी उतर गए वो पीछे छूट गई, उनका छोड़ होना नाव छोड़ दे अगर फिर हम तो उतर तक आते कैसे। ऐसा विचार तुरंत कर लेना चाहिए, जब जब त्योहार चरित्र का कहीं वर्णन सुने तो फौरन, और अगर कोई निश्चय की बात करे तो श्रोता का कर्तव्य है कि वो उसके पीछे छिपा हुआ त्योहार भी जान ले गए इसको ग्रहण में करे। इतना जो है अब तो अपन बहुत दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, अब तो मैं सोचता हूँ कि आप ये बातें समझने लगे होंगे, कठिन नहीं है ज्यादा, धीरे धीरे इन बातों को भी अपने जीवन में अपन को समझना चाहिए कि हम व्यवहार चरित्र अंगीकार तो कर बैठे हैं लेकिन व्यवहार चरित्र के साथ मेरी प्राप्तत्व क्या है, मेरा साध्य क्या है, मेरा साध्य है राग द्वेष से निवृत्ति, यही मेरे तत्व ज्ञान को प्रवृत्त करना करता है। तत्व ज्ञानी होगा तो पहले नंबर कहेगा वो कि काय के लिए करना राग द्वेष कम करने के लिए करना, क्योंकि राग द्वेष मुझे मालूम पड़ गया है कि मेरे व्यवहारिक परिणति है, मेरा स्वभाव नहीं है, जो मेरा स्वभाव नहीं उसको क्यों करूं, मैं अपने स्वभाव से विपरीत क्यों जाऊं। स्वभाव की प्राप्ति के दो ही उपाय हैं, या तो स्वभाव का विचार किया जाए या कि विभाव से बचा जाए या कि विभाव को हटाने के लिए उपक्रम किया जाए। आज वर्तमान में हमारे उपादान में इतनी योग्यता नहीं है भैया कि हम अपने उपादान आत्मा का ही आलम्बन लेकर के कीर्तन करों की हैसियत की तो कोई है नहीं अपन कि वो तो सीधा सीधा जन्म लेते ही साथ जो है सम्यक दर्शन के साथ पैदा होते हैं और आठ बरस होने पर उनका आचरण अनुवृत्ति के समान हो जाता है। उनको तो अनुवृत्त की चर्चा सुनते सुनते भी अनुवृत्त लेने की इच्छा नहीं होती, उनके तो आठ बरस पूरे हुए और अनुवृत्ति के समान उनका आचरण हो जाता, ग्रहण नहीं करते वे अनुवृत्त क्योंकि महान आत्माएं हैं वे महावृत्ति अंगीकार करते हैं, अनुवृत्त तो उनके जीवन में स्वतः ही हो जाते हैं, ये तो अपने लिए है शामक के लिए कि इन अनुवृत्तों का पालन करो ताकि महाव्रतों की तरफ जा सके। हम आकांक्षा हमारी महाव्रतों की रहेगी अनुव्रत अंगीकार, हमारे उपादान में उतनी क्षमता नहीं है कि हम सीधा आत्मा का आलम्बन ले सके, इसलिए कहते कि जो आत्मा से पर पदार्थ है उनका आलम्बन छोड़ो, जितना उनमें रंजायमान होगी उतना अपने आत्मा से विमुख होते चले जाओ, तो जो जो बातें हमें आत्मा से विमुख करती है उनमें क्यों ले जाओ अपने मन को, उनमें क्यों अपने शरीर को लगाओ और वचन को लगाओ, मन वचन काय को वहां से हटाने, उस हटाने के लिए ये चीज अपन बहुत गौर से देखें। व्रत शब्द सुनते ही अपन को जो है वही मुश्किल सी लगने लगती है, ये त्याग व्याग वाली बात जो है सुनाओ आपको अच्छी अच्छी चर्चा सुनाओ, आत्मा की चर्चा सुनाओ, हम ये आत्मा की चर्चा सुन लो, मन आत्मा की चर्चा तो इतने घंटा बार सुन रहे मनो, फिर उसके बाद जाकर के पांच इंद्रियों के विश्व में रंजायमान हो जाओ तो वह आत्मा की चर्चा कौन काम में आएगी, कभी काम में आएगी, बताने तो कब आए जब 23 घंटा हम अपने बाजार में भी है तब भी वहां पर ध्यान रखते हैं कि जो कुछ कर रहा हूँ सब प्रपंच संसार बनाने का कारण है, अपने हाथ से उपद्रव कर रहा हूँ, वहां तो वो उपद्रव नहीं मालूम पड़ता है, वहां तो सच्चा उपाय नहीं जान पड़ता है। जब तो 8:30 बजे प्रवचन छूट जाए, मैंने दुकान को पारो तो खुल जाओ, चलिए ग्राहक आ रहा है। वो उपाधि लगता है कि ये उपाधि लगता है, उसको ये मान करके करते हो तो कहते ठीक है, ये मान के करो, लेकिन धर्म की चीजों को तो हम कहते कि व्यवहार चरित्र ये मान करके ग्रहण करो कि छोड़ना है एक दिन, तो फिर भैया दुकान भी ये मान करके जाओ। लेकिन दुकान तो उपाधि है, क्योंकि उससे तो जिंदगी चलती, जो पैसा नहीं आ रहा तो समय भर ले जा रहे उस ग्रहण को हम देख करके। हमने तो अभी तक इतने वर्षों में जी अनुभव किया कि निश्चिंत बैठे हो, 4 पैसा आ रहे हैं, सब अपने सुख सुविधा से काम चल रहा है, सो धर्म कर भी की फुर्सत है, और अगर सुविधे को कमा के संजा को खाऊ में होते तो इतने नहीं आते। इतना पुण्य है अपना कि अपने पास इतना है कि निश्चिंत है, उसकी चिंता नहीं है कि ज्यादा अपन को घूमना पड़ेगा और कमाना पड़ेगा, आज के खाने को नहीं है, नहीं तो खाने को नहीं हो तब भाई दुकान पे सवेरे से कई लोग तो चले जाएंगे, सवेरे से कमा के चले, क्योंकि जब कमाएंगे जब 12 बजे खाएंगे और संध्या को होगी। किसको उपाधि मानते, किसको ही मानते हैं, उसको ही मानते हैं जो संसार का कारण है। आचार्य भगवान कहते कि उसको ही मानो, अभी तो जो संसार बनाने वाले उनको उपाधि मान लेते और उनको कहते के ही मानो। पूजा तो करो मनो, हमारा आत्मा का सुधार नहीं है, ही मान करके करो। अरे नहीं भैया, पूजा तो करो उपाधि मान करके, तो चलो अच्छा हुआ घंटा भर की पूजा विस्तार नहीं, सो 5 इंद्रियों के विषयों से तो मन बच गया। घंटे भर को सास ससुराल जाने बैठ गए, जहाँ आत्मा की चर्चा चली और हम जल्दी से जाके बैठ गए, क्योंकि सुन ले इतनी देर हम विषय कषाय से बच जाएंगे, क्योंकि विषय कषाय मेरा स्वभाव नहीं है। उतने जितने वो सारे उपाय करूंगा दिन भर में जो कि मेरे स्वभाव की तरफ ले जाए, विभाग की तरफ ले जाने वाला। अगर ऐसा विचार आ जाओ तो व्रत तो फौरन जाना है, वो व्यक्ति तो व्रति है, और जो व्रत नियम संयम बाहर से ग्रहण कर ले गए और उसको ऐसा विचार न हो गए तो उसको कहते कि तुम्हारे व्रत नियम संयम से उतनों का नियम ये घाटे का सौदा है भाई, ये तो घाटे का काम कर लिया तुमने। कैसे कि पिताजी गए बेटा की तुमने दुकान छोड़ गए, तो भैया बेच लू सभी भाव जो है ये भाव जो है वापिस लौटी, ऊंची की काय कितने की बेची, कहना 2000 की बेची। अब 2000 की तो बेची, पिताजी 2000 की बेच सकते, कहना मुनाफा कितो भाव, कहना 100 रुपये। अरे कहना घाटे का सौदा, हम 2000 की बेचे तो 200 कमाओ, तो तुमने 2000 की बेची है 100 कमाओ, घाटे का सौदा है कि नहीं। ऐसा ही हमारे साथ भी है कि व्रत नियम संयम भी करे, मनो भीतर में तक ज्ञान नहीं था तो उससे उतना लाभ नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि हानि हुई, ये ध्यान रखना हानि बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन घाटे का सौदा हुआ, हुआ तो है सौदा, पुण्य का अर्जन हुआ, उसी से निर्ग्रह हो सकती कि थोड़े चूक कर रहे संभाल लो। ऐसा कहना, ऐसा नहीं कहना कि ऐसे व्रत नियम संयम से कुछ नहीं होने वाला, बहुत कुछ होने वाला, कम से कम दुर्गति से हम तो बच जाओ, नरक नहीं हो, व्रत नियम संयम लेने वाला फोकट में लेने गए, विचार विचार कचु न हो तत्व ज्ञान में हो गए, कचु न हुए 7 तत्वों के नाम में मालूम हो, फिर भी व्रत नियम संयम करेगा तो नरक नहीं जाएगा, दुर्गति नहीं होगी, इतना तो ध्यान रखना। और अगर सच्ची श्रद्धा है, सच्ची देव गुरु शास्त्र के प्रति है तो परम्परा से मोक्ष का कारण यही लिखी रखी हुई है, उसमें तो कोई बात ही नहीं। अपनी की श्रद्धा तो है कि सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति तो श्रद्धा है, इसके अलावा तो किसी भी तरह की के अलावा अपन ने किसी को भगवान मानेंगे, अपने बैड में ये चीज हम तो ये कहें, आप किसी से भी कह दो, आप कितने भी वो कहीं भी चला जावे, लेकिन आखिरी समय मर्द के समय पहचान हो जाएगी, दुख के समय पहचान हो जाएगी, अहम सिद्ध निकलेगा मुंह से, नमो कार मंत्र निकलेगा। जी श्रद्धा इस बात की प्रतीक है, उस कुल में जन्म दिया है तो उसके संस्कार तो रहेंगे, भ्रष्ट हो जाए कितना भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो जाना चाहिए, नहीं, अगर हो भी जाए तब भी संस्कार तो है, इतनी श्रद्धा तो अपनी है कि भगवान नहीं जानते, ज्यादा ध्यान नहीं है 7 तत्व को नाम तक नहीं मानते, अगर जैसे 7 तत्व भगवान ने कहे सो बस वैसे ही है, इतने ही तो काम चल जाए, और मैं सब दर्शन है इसका, इसलिए ऐसा विचार करके कि जो चरणानुरूप के अनुसार सच्ची देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा मुझे हुई है उसका लाभ ले लेना चाहिए, मुझे जल्दी से व्रत नियम संयम अंगीकार करना, जितने बने उतने 8 मूल गुणों का पालन श्रावक को करना चाहिए। ऐसी बात पिछले दिनों पर पांच उदम्बर फलों का त्याग करो। जी आठ तो ले दो, बच्चों को दिलवा दो कि मध्य मधु मांस नहीं खाने भैया और पांच उदम्बर फल नहीं खाने। बहुत आसान है, इतना तो हम कर ही सकते हैं। पहले डायरेक्ट छोड़ेंगे फिर इनडायरेक्ट भी छोड़ेंगे। पहले तो डायरेक्ट छोड़ो उनको खाना, अब इनडायरेक्ट जो है किसी चीज में लेके आ रहा है, अपन को जानकारी नहीं है तो जानकारी करेंगे और जैसे जानकारी हो जाएगी उसको भी हटा देंगे। इसमें क्या दिक्कत है? तो कहते कि इससे आगे बढ़ो तो तीन मकार का त्याग तो करो, पांच अनुव्रत भी ले लो। जी आठ मूल गुण है ये बहों के हैं और उसमें से पांच अनुव्रत में से भी अहिंसा का पालन तो आसानी से हो सकता है क्योंकि कौन भी जन्म होगा तो ऐसा थोड़ी करेगा कि जब हमारी हमने चीती हम तो चीती आज मार के रहेंगे, ऐसा तो विचार करेगा नहीं है। या किसी को मारने का भाव तो करेगा नहीं, संकल्प तो नहीं करेगा। और उससे हो जाए विरोधी हिंसा हो जाए, आरम्भ सारंभ करे, उद्योग धंधा करे तो उद्योग धंधा भी बचा के करेगा। कि विज्ञानियों के दूर व्यापार है कि तो सोने चांदी हीरे जवाहरात का करे और के कपड़ा को करे, इसके अलावा तीसरा नहीं करे। और कहते कि वो सब करे तो करे बोलो मैंने वैक्सीन नहीं करेगा, अपनी व्यक्ति नहीं खोले बड़ी भारी क्योंकि उसमें बहुत अधिक जीव राशि की हिंसा होती। पहले ऐसा विवेक था, उद्योग में भी ऐसा विवेक था। हमें तो याद है कि एक व्यक्ति ने जो है खोल ली थी फैक्ट्री, खोल ली थी सन 60 की बात है, फैक्ट्री खोल ली तो समाज से बाहर कर दिया। रियल बैंक के अपने के व्यवहार बंद अपना उनकी फैक्ट्री है, अब बताओ ऐसा था। ठीक है, आज की परिस्थिति में जैसा है उद्योग में होने वाली हिंसा हो रही है उसको भी कम किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। पर संकल्पी हिंसा का त्याग तो किया जा सकता, आसानी से किया जा सकता। इतना हिंसा अनुग्रह तो अपन आज ही ले सकते। झूठी ऐसी तो बोलना नहीं कि जिसने दूसरे का घात हो जाए सत्यानुव्रत होगी। चोरी जाकर के मंदूक ले जाते हैं, दाता बेगाड़ने वाली चीज है नहीं। कहीं जाकर के कोई व्यक्ति तो पैसा चोरी भी हो गया, जिससे विकार किया है उसके अलावा बाकी सबके प्रति अपने विचारों की निर्मलता हो जावे, सुब्रह्मचरी अनुव्रत हो जावे और परिग्रह का परिमाण कर लेना चाहिए। और बहुत आसान है कि आज की तारीख में हमारे पास जितनों पैसा है, जितनों सोना चांदी, जितने मकान दुकान, जितनी बड़ी हस्ती है उसे दूर नहीं रखे, उसे ज्यादा नहीं रखे। बस इतना भी नहीं कर सकते हमारे ख्याल से। तो इतना तो हर व्यक्ति को संकल्प कर ही लेना चाहिए, हर व्यक्ति को। हमारे पास लोग दो तीन दिन से लगातार आ रहे हैं कि हमें परिग्रह परिमाण दे दो। अब परिग्रह परिमाण हम दे तो सकते लेकिन घर का एक व्यक्ति ले ले दे और बाकी की आकांक्षा बहुत हुए तो उसको तो कदम कदम पे आकुलता होने लगी कि जब हमने अपने नाम रखी है, अब तुमने घर में अपने नाम तो रखी है नाम के, मानो हम भी घर के सदस्य, हमें भी तो वो खोलने के विकल्प हुई है कदम। जब समझ आती है सबका तो उससे राग देश तो होंगी, विकल्प तो होंगी। भले हमारा वही सोनो हमारी बिटिया को आए मनो रखो है घरे तो उसके वजह से उसके संरक्षण की चिंता माँ को रहेगी कि नहीं रहेगी। अब क्या करेगी, वो तो लेना चाहती है और लड़के बच्चे जो है नहीं लेना चाहते, सब ले लेते हैं। फिर देखो आप आनंद के घर में क्या आनंद आता, स्वर्ग बन जाता है। स्वर्ग में और है क्या, वहां पर कहते जितने जने बड़े बड़े स्वर्ग के देव हैं उनका अभिमान और परिग्रह छोटे हो जाए। बताओ बड़ी भाव बढ़ता चला जा रहा है, परिग्रह कमती हो रहा है, भूल जाते कैसे मनती होंगे विचार करो। कहते बड़ी भाव तो बढ़ता है लेकिन आसक्ति कम हो रही, इसलिए परिग्रह कम। रचने वो चीजें हमें खुलते नहीं है, हम उनका उपयोग ही नहीं करना, हम उनके संरक्षण का विचार ही नहीं करते। अब अच्छी ही चली जाए, जैसे कि बनारसी दासी के यहाँ पर चोरी करने आया, सोने अपने हाथ से बनवा रहा तो और गट्ठा भरवा रहा तो मूल पे फिर लगा भी है बहुत अच्छे जो कम भाव ऐसे ही परिग्रह परिमाण दो और जो तो अपने तो एक चीज चली जा रहे तो दिन दिन भर आठ ध्यान होता है। आठ ध्यान धर्म ध्यान सब एक तरफ चला रहा, समंदर में खड़े हैं तो कौन ख्याल आ जावे करी बातचीत हटी और बातचीत है नहीं और इनके पास तो है। इसलिए कहते कि परिग्रह का परिमाण नहीं करेंगे तो पांचों पाप होंगे। परिग्रह का परिमाण ये सबसे बड़ा, अब परिग्रह का परिमाण तो कर लिया पर सीमा और बांधनी पड़ेगी। इन अनुव्रतों के गुणों में वृद्धि करने वाले भी व्रत बताए हैं, कितना हमारा ध्यान रखा है श्रावक का, आचार्यों ने साधु का और श्रावक का
जो मोक्ष मार्ग है उसका बहुत ध्यान रखा, उसको कदम कदम पे परेशानी आ सकती, इसलिए विभिन्न प्रकार से उसकी सुरक्षा के उपाय बता दिए कि तुमने अनुव्रत ले गए, चलो कोई बात नहीं। मनो अनुव्रत लेने के बाद उन गुणों में वृद्धि होती रहे इसका उपाय हम बताए देते हैं कि आवागमन की कमी कर लेना, क्योंकि जितना आवागमन करोगे उतना आवागमन बढ़ेगा। आवागमन का मतलब संसार और आवागमन का मतलब जी अपन जो आते जाते यातायात करते हैं, ट्रेवलिंग करते हैं, क्योंकि ट्रेवलिंग की भी सीमा रख लो, क्योंकि ये सीमा इसलिए अपन नहीं रखते हैं कि क्या पता कभी वहां जाके उस देश में जाकर के और अपना व्यापार फंस गया तो क्या करेंगे। तो कहते आवागमन की सीमा कर लो तो वृद्धि पलेगा। और जो निष्प्रयोजनकारी है उनको त्याग कर दो। जितना प्रयोजन है, रोटी बनाने में हिंसा होती तो हमने कहा मना करी, बनाओ रोटी, मना तुम सबकी बनाने लगो तो ये तो गड़बड़ है। और जो प्रयोजन ही नहीं है, अब चार जने खाए बारे में और पसंद बन गए, इतनी संख्या तक बन गई, कौन के बन गए, अब बना रहे हम तो बनाने वाला तो काम बनाने का है, तो भैया विचार के बनाओ। क्योंकि निष्प्रयोजन पाप नहीं करना, प्रयोजन भूत तो पाप हो ही रहा है लेकिन निष्प्रयोजन नहीं करना, इसी इसके व्रत ये भी है। देखो आचार्यों की दृष्टि कि अब पाप तो छुड़ाना है पर अभी प्रयोजन भूत पाप नहीं छुड़वा पा रहे, क्योंकि पाप तो दिन भर हो रहा है श्रावक से, क्योंकि निष्प्रयोजन पाप छोड़ो। पंखा के नीचे बैठे सुपंखा की हवा ले रहे, मनो जब उतर से उठ के जाने लगे तो पंखा क्यों नहीं बंद किया, हिंसा होगी, व्यर्थ चल रहा, पानी ढूंढ रहे हैं, चले जा रहा रास्ता से पत्तियां तोड़ के फेंक दी, बच्चे लोग करते हैं, बड़े भी करते हैं, कई लोग खेल खेल में घास के ऊपर दौड़ रहे हैं, घास पे जो है भोजन इत्यादि कर रहे हैं, तो अब हम नाम में गए कहीं पर जाकर के वही भोजनों की व्यवस्था है और रात में है तो करेंगे इसमें क्या बात, जरा देर का इंटरटेनमेंट है। आजकल तो हमने देखा कि ऐसा होने लगा कि बढ़िया घास के उसमें लॉन में और वहीं पर कुर्सी टेबल लगेंगी और उसी में वफे सिस्टम से जो है वह भोजन हो रहा और लोग कर रहे जाकर के, क्योंकि इतना तो विचार करो। भगवान महावीर स्वामी के बारे में लिखा है, किसी कमी में लिखा है, कमी की कल्पना देखो, कृष्णा माता हाथ पकड़ करके बचपन में वो चले जा रहे हैं तो कृष्णा माँ चली जाती बगीचे में, बगीचे में घास है, इन्होंने कम हाथ छोड़ दिया, पता नहीं लगता कृष्णा माँ को, जब भीतर जाके देखती कि वर्धमान कहाँ गया तो दिखता नहीं, तो देखा कि बाहर खड़ा वो तो बगीचे के बाहर जाकर के पूछती है कि तू मेरे साथ क्यों नहीं आया, देख तो कितनी मुलायम दूर है, इस पर चलने में कितना आनंद आता है। तो कहती कि माँ ऐसी बात मत करो, मुझे तो ऐसी बात सुन करके भी दुख होता है, तुम नन्नी नन्नी डूब को जब कुचलते हुए जाती हो तो मुझे लगता है जैसे मेरी पीठ पर चल रही हो, देखो तुम मेरी पूरी पीठ छिड़ गई है, तो कभी कल्पना करता है कि जब कृष्णा माँ उठा करके और कपड़े में उठा के देखती है तो जगह जगह पीठ पर पैर के निशान बने, तभी की कल्पना है कितनी संवेदनशीलता है कि दूसरे ने धरा है पांव उस पर और यहाँ पर ऐसा लगा कि यहाँ रख दिया है, जब ऐसी परिणामों में निर्मलता आवे, इतनी संवेदनशीलता आवे, तब जी प्रतिनियम इत्यादि निष्प्रयोजन पाप, क्या आवश्यकता है कि मैं उन जीवों को व्यर्थ जीवन पर चलूं और फिर अपने थोड़े से इंटरटेन के लिए अपने थोड़े से स्वास्थ्य के, क्योंकि निष्प्रयोजन पाप से बचना और क्या करना, रोग उपभोग की सामग्री अपार है उसकी सीमा करनी, रोज रोज करती, वैसे तो बड़ी सीमा करेगी परिग्रह के कल्याण के, रोज रोज कितनी कम 50 कपड़ा की सीमा रखी थी तो पहनने कितने भैया दिन भर में 4 जोड़ी पहनेंगी बदल बदल करके और क्या करेंगे, तो कहती आज के लिए 4 है मेरे, मंदिर में जाके दर्शन करके मैं वनों का आनंद पड़ा, आज तो ऐसा करूंगा, ले लिया वही वही संयम लेकर के घर वापिस आ गए, आप उनका मिट गई 50 की 4 की बची, उपभोग की सामग्री सीमित कर ली, भोग की भोजन की सामग्री की सीमा कर लो, रोज रोज इतनी जागृति आ जाती है व्रती व्यक्ति के लिए कि वो अपने आत्म कल्याण के लिए सवेरे से चिंतित है और सवेरे से शाम तक की अपनी पूरी प्रक्रिया को अपने हाथ से रेगुलेट करता है कि आज मुझे क्या क्या करना, जरा भी नहीं चूकूंगा मैं आज, कुछ भी व्यर्थ नहीं करूंगा, ज्यादा आवागमन नहीं करूंगा, भोग उपभोग की सामग्री में आसक्ति तो घटाऊंगा पर भोग उपभोग की सामग्री भी कम कर दूंगा, क्योंकि उसके माध्यम से मेरे धर्म ध्यान में बाधा आती है। हर ध्यान रोज ध्यान करना पड़ता है, अब नहीं करूंगा हर ध्यान रोज ध्यान, मुझे ऐसा तत्व का ज्ञान है। जिस तत्व का ज्ञान है भैया कि हर ध्यान रात रोज ध्यान कम करे, धर्म ध्यान में ज्यादा लगा ले। ये तत्व ज्ञान नहीं है कि बड़ी बड़ी बातें तत्व की घंटा भर विचार कर ले वहां 23 घंटा हो राम कृष्ण हो विषय कषाय में सब में लगे फिर समझा को आए सुबह बड़ी चर्चा करे उठा करके। तो व्यक्ति ग्रंथ में पढ़ने की जरूरत है ग्रंथ की, लेकिन इनको जीवन में अपन उतारेंगे। उतारने का उपाय नहीं है और कोई उपाय नहीं, जो भगवान का बताया उपाय है अपने घर का नहीं है। कैसे आसानी से बता दिया कि अगर तुम्हें राम कृष्ण बचना हो, आज ध्यान रोड ध्यान से संसार से बचना हो तो आवागमन कम करो। आवागमन का नाम संसार है, उसी को कहते दीर्घत ले लो, दसों दिशाओं में सीमा कर लो, कितना कितना जाना है, ज्यादा अपने को नहीं जाना। जो निष्प्रयोजन पाप है वो अपन ने छोड़ दिया, अनर्थ दंड व्रत हो गया और क्या, मन वचन का है कि व्यर्थ या अनर्थकारी निष्प्रयोजन पर्पज लेस सिंपल लेस कह जाता अनर्थ दंड, मन अनर्थ का तो अनर्थ समझते बन हो, दंड मतलब होता मन वचन का है, क्योंकि मन वचन का है कि दुष्प्रवृत्ति और ऐसी दुष्प्रवृत्ति जो दूसरे को अनिष्टकारी हो है, क्योंकि ऐसी प्रवृत्ति तो छोड़ो कम से कम, मन वचन का है कि दिन भर में तो इसी बार अनर्थ दंड भेद हो गया और भोग उपभोग अपन समझते हैं एक बार भोग करके उपयोग में आकर के समाप्त हो जावे सुबह भोग कहलाता, और जिसको बार बार उपयोग में आ गए उपभोग कहलाता तो वस्त्र इत्यादि तो है उपभोग की सामग्री और भोजन है भोग की सामग्री का, इसमें ऐसा जो है इनकी भी लिमिटेशन रोज रोज की जा सकती है। अपने आप जो है विचार कर लिया जाए तो ऐसा करेंगे, ये सावधानी है, प्रति व्यक्ति इतनी सावधानी रखता है। अपन देखते हैं कि दिग्वत कैसे जो है लिया जाए और कैसे हम अपने पाप को कम करें, पाप का त्याग तो कर दिया है लेकिन और कैसे कम कर सकते इसको पढ़ते हैं। दिग्वलयम् परिगणितम् कत्वा तोऽहं बहिर्नयास्यामि इति संकल्पो दिग्वत् मृत्यं पाप विवृत्ति। आवृत्ति अर्थात आमरण, देखो आज जब व्रत भी लिए जाते हैं तो दो चार दिन को नहीं लिए जाते, अपने यहाँ पर की प्रक्रिया नहीं है, जो भी व्रत लिए जाते हैं नियमित व्रत है। अनुव्रत और महाव्रत जो है व्रत है जीवन भर को लिए जाएंगे, अनुव्रत लो क्या महाव्रत लो, ऐसा नहीं कि महीना भर को लेंगे फिर उनके बाद में या एक ले लो पांच में से, ऐसा नहीं चलेगा। जब लोगे तो एक लोगे तो पांच लेना पड़ेगा और जब व्रत लेंगे तो जीवन भर के लिए लेना पड़ेगा। आज के लिए अहिंसा व्रत है ऐसा नहीं, रोज रोज के लिए नहीं, रोज रोज तो कम करेंगे और जीवन भर के लिए एक बार ले लेंगे। तो कहते मरण पर्यंत अनुपाप निवृत्ति, अनु मतलब छोटे छोटे पाप, बड़े बड़े पाप का तो त्याग कर ही दिया है अनुव्रतों में, लेकिन और मेरे द्वारा छोटे छोटे पाप हो जाते हैं उनको उन पापों की निवृत्ति के लिए दिन बलराम हम दिशाओं के समूह की परिगणतम अर्थात मर्यादा कर लेते हैं। दिग्वलयम परिगणतम, अब दसों दिशाओं में मेरे द्वारा जाने आने से जो पाप होएगा उस सूक्ष्म पाप से भी बचता हूँ, स्थूल पाप का त्याग तो कर ही दिया है। हम इति कहते वही मैं आप स्वामी कितनी सीमा रख लूंगा उससे फिर बाहर नहीं जाऊंगा तो क्या होगा, उससे बाहर होने वाले सूक्ष्म पाप से भी बच जाए। जैसे किसी व्यक्ति ने सोच लिया कि आज हम अपने कमरे से बाहर नहीं जाएंगे तो बताओ कितना बड़ा काम हो गया, तो उससे बाहर होने वाले पाप से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। देखो जो पाप का त्याग कर देंगे और फिर उसके आस पास पाप भी होता रहे तो उसको उसका दोष नहीं लगता, ये ध्यान रखना। लेकिन जिसने पाप का त्याग नहीं किया है और उसके आसपास कोई पाप होता है तो उसको उस पाप का भी दोष लगेगा, पाप के त्याग ही होने लगेगा। जिसने पाप का त्याग कर दिया है फिर होता है लोग करें तो करें और उसका थोड़ी दोष लगेगा, भगवान तो जो है पाप से मुक्त हो गया, दुनिया पूरी पाप से मुक्त है, भगवान उनके बीच में तो उनको थोड़ी उसका पाप लगेगा। इस तरह कहते इसलिए आवश्यक है कि अपन जो है अपनी सीमा तो बनाई ले, इसके बाद क्या होता क्या नहीं होता है इसकी अपन चिंता नहीं करें। इसी को कहते अपना लोटा तो अपन छाल के कुआ थोड़ी छाला जा सके। हमने अपनी सीमा बना दी, अब बाकी उसके बाहर पाप तो हो गया। अपन कहें कि नहीं गाड़ी जरूर चल रही तो गाड़ी रोज चल रही तो गाड़ी में तो बैठ गई मैं पाप होगा तो हमारे यहाँ थोड़ी चल रही सबके लाने चल रही। कहते नहीं आप अपनी सीमा बना लो तो उस गाड़ी में कितनी बार बैठना मिल जाए ट्रेन तो रोज चल रही ट्रेन से आने वाली हिंसा का क्या हमारे लिए पाप लगेगा। कहते वो जो उसमें बैठेगा उस पर जिसने उसका त्याग नहीं किया उस पर लगे कि किसी तरह ये है कि सूक्ष्म पाप से हम नहीं बच पाते हैं अगर हम दिशाओं की सीमा नहीं करते तो दसों दिशाओं में सीमा कर ले और दसों दिशाओं में सीमा कैसे करते अब तो जो है किलोमीटर और इस वाली प्रक्रिया आगे पहले कैसे करते थे दसों दिशाओं की सीमा संकल्प कर लेना कि मैं इतनी सीमा से बाहर नहीं जाऊंगा मैं भारत की सीमा में निकल गई विघ्रत हो गया दक्षिण दिशा में इधर जितना भारत का विस्तार है वहां तक नहीं जाऊंगा हिमालय से आगे नहीं जाना और इधर जो है वेस्ट बंगाल है उधर गुजरात है उससे आगे मुझे जाने की आवश्यकता नहीं ये मेरी और ऊपर 5,000-15,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर एरोप्लेन चलता है 15,000-20,000 उससे ऊपर जाने का काम नहीं ये तो कहूँ मन में आ जाए कि अपन भी अंतरिक्ष में चले अपने को नहीं जाना जितना मिल जाने में मौका तो त्याग करो अपन को 15,000 से ऊपर नहीं जाना तीन में और जिसने तीन का भी त्याग कर दिया तो वो तो उसके ऊपर वहां जाने की भी आवश्यकता नहीं। कोला गोल फील्ड है अगर आपको सोने की खदान में भी देखने जाना हो तो 3 किलोमीटर गहरी इससे ज्यादा गहरी दुनिया में कोई चीज नहीं है तो 3,000 किलोमीटर नीचे उतरेंगे 3 किलोमीटर है इससे ज्यादा तो है क्योंकि ऐसा ये तो बहुत बड़ा हो गया कुएं की सीमा नहीं जाती कि कुएं जितना गहरा है उससे नीचे मुझे नहीं जाना है और ऊपर भी जो है अपने घर से ऊपर नहीं जाना है 6 खंड के हैं तो 6 खंड से इसमें सीमा हो जाएगी तो अगर कहूँ मन की मेरे की इच्छा हो 15 खंड की तो दूसरी खंड में आएंगी और जमा ऊपर नहीं जाएंगे वहां का पाप का कौन पड़ेगा। आज जिस तक पाप के उपाय करे जा रहे जितने जो फाइव स्टार है जितने इनका कोई विरोध नहीं कर रहा अगर 9 मंदिर बने तो अब भाई 4 आदमी खड़े हो जाए कि अभी क्या बन रहा मंदिर और अगर 5 स्टार 2 करोड़ रुपया की प्लानिंग हो जाए तो आदमी खुश हो कि हाँ बहुत अच्छा है बंदी हमारे तो हमारे भोपाल का नाम हो जाएगा तो भोपाल में 5 स्टार होता है। इसमें सौभाग्य मानता विषय के सहाय की चीजें मर जाने तो सौभाग्य मानता है और हमारे यहाँ पर इतने मंदिर है इस बात में सौभाग्य नहीं मानता तो बहुत बहुत मुश्किल समझने लगता कई बार जो है प्ररूपण करते करते ये बातें बीच में आ जाती है कि देखो अपन जो है संसार बनाने के उपाय में कितने सजग है और मोक्ष के उपाय में सजगता नहीं प्रति व्यक्ति मोक्ष के उपाय करने में सजग बस इतना ही उसका लक्षण व्यक्ति का लक्षण है कि जहाँ उसका संसार बढ़ता वहां वो पीछे हाथ खींच देगा भैया अपन तो दूर हटो ऐसा दिन भर विचार होना चाहिए। व्यक्ति व्यक्ति की बहुत जिम्मेदारी है अगर की व्यक्ति उसको देख करके और उससे शिक्षा ले ले ऐसा ना हो जाए कि अब व्यक्ति को देख करके अब व्यक्ति व्रतों से अरुचि कर लेगा व्यक्ति का व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि दूसरा भी व्रतों की तरफ आकृष्ट हो जाए करेगा इन्होंने व्रत लिए इनके जीवन में कितनी शांति और अगर वो देखता करे इनके जीवन में तो हमसे ज्यादा अशांति और इनको भोजन की चिंता है कि क्या समय और क्या समय मिले हम तो जहाँ तय खाली वो ऐसा विचार करता वो ये नहीं करेगा कि देखो इनने इतना व्रत किया वो ये कहेगा कि इनको अपने भोजनों की समय से शाम तक चिंता है हम तो भोगी खा ले जब तय खाने उनके भोजनों की चिंता भी ध्यान रखना हम कह चुके पहले कि एक व्यक्ति जो पंचमोण स्थान वर्ती है अपने भोजनों की चिंता भी कर रहा है शुद्ध भोजन की तो भी एक सामान्य सम्यक दृष्टि से असंख्यात गुणी निद्रा कर रहा है और एक पंचमोण स्थान वर्ती व्यक्ति अनुव्रति सामायिक में बैठ के अपने आत्मा का चिंतन कर रहा है उससे असंख्यात गुणी निद्रा एक मुनि महाराज शुद्ध भोजन की गवेषणा को निकले हैं और भोजन का विचार कर रहे हैं वो कर रहे हैं असंख्यात गुणी इसकी ऐसा नहीं कहना आज अपन जल्दी से क्या दिखाई देखो प्रति व्यक्ति को अपने 16-16 की भोजनों की चिंता है चिंता तो रहती इसलिए रहती क्योंकि मेरे द्वारा पाप में हो जाए ये परिणाम उसका है ये नहीं है कि मेरे लिए बहुत अच्छा भोजन मिल जाए नहीं इसलिए प्रति व्यक्ति को बहुत सावधानी की आवश्यकता है सूक्ष्म पापों से बचना चाहिए तो उसके लिए सीमा करनी सीमा कैसे करेंगे तो पहले कैसे सीमा करते थे आज भी ऐसे कर लेते अपने यहाँ सीमा तो ऐसी बनाई गई कि एमपी और यूपी की बॉर्डर कौन सी बॉर्डर है या तो नदी हो या पहाड़ हो और कहीं से बॉर्डर बन जाती है लाइन थोड़ी खींचती थी एक लाइन खींच गई सब में जाकर के लिए वो करके कोई एमपी या करती या यूपी ऐसा नहीं कहते कैसे खींचेंगे मकरा कर सही है, क्योंकि धर्म ध्यान मुख्य है। जैसे बने जिससे जितना हो सके वो